रात का समय था। हवेली के बड़े बड़े कमरों में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स पर हल्की सी धूल की परत थी और खिड़कियों के पीछे से बाहर की ठंडी हवा आ रही थी, जैसे रात का संगीत सुनाती हुई। शकुंतला अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसने आज रात का खाना धीरे धीरे खाया था। भोजन करते समय उसके मन में अजीब सा उलझा हुआ एहसास था, जैसे हर बात का जवाब उसके अंदर पहले से तय हो चुका हो, पर दिल के अंदर हल्का डर और बेचैनी अभी भी मौजूद थी। वो सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। ठीक उसी समय कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला गया। शकुंतला ने आवाज़ सुनी और तुरंत अपने मन को संयम में रखा। दरवाजे के पीछे खड़ी थी उसकी जेठानी। जेठानी का चेहरा हमेशा की तरह शांत और मिठास से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी खेल में अपनी चाल चल रही हो। तो आज यहाँ आना कैसे हुआ? जेठानी ने हल्की सी गंभीरता के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में ढककर रखी गई गर्मजोशी भी झलक रही थी। शकुंतला ने बिना झिझक के जवाब दिया, माँ जी, तबीयत के कारण आई हूँ, रहने का कोई इरादा नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द तो साधारण थे, पर शकुंतला की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसके शब्दों में हल्का ठहराव था, उसकी आवाज़ में हल्की कठोरता थी, जैसे वो अपने मन में किसी पुराने दर्द और गहरे एहसास को दबाए हुए थे। जेठानी ने हल्का सिर हिलाया और उसके चेहरे पर वही मिठास खोल दी। अरे हमें क्या, तुम रह भी सकती हो। शकुंतला की नज़रें कुछ देर जेठानी के चेहरे पर टिक गईं। उसने महसूस किया कि जेठानी ने हमेशा की तरह ढेर सारी बातों के बीच अपने इरादों को छुपा रखा है, पर शकुंतला अब बदल चुकी थी, उसका डर कहीं नहीं था। धीरे धीरे शकुंतला ने उठकर जेठानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर सख्ती से बोली, ये दिखावा आप अपने पास रखो। जेठानी ने जैसे थोड़ा चौंक कर उसका चेहरा देखा। शकुंतला ने अपनी बात जारी रखी, सब याद है, मेरे पति वहाँ शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो आपने मुझ पर अपने पति पर डोरे डालने का गंदा इल्ज़ाम लगाया था। कोई कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि खुद मेरे पति भी नहीं, और वो सब मैं अच्छे से जानती हूँ। जेठानी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, उसकी मुस्कान में हल्की कठोरता घुलने लगी। शकुंतला ने उसकी भावनाओं को पढ़ते हुए आवाज़ को थोड़ी धीमी लेकिन मजबूत बना दिया, ये आपने दोनों ने सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि जेठ जी और भैया का बिजनेस में टकराव होता है, यही वजह थी कि आप दोनों ने मेरे ऊपर झूठ और इल्ज़ाम लादे। जेठानी ने अचानक मुंह बना लिया, उसकी आंखों में झलक रही थी वो पुरानी गर्व और हठ की भावनाएं। उसका चेहरा ठंडा और सख्त हो गया, जैसे उसके अंदर का हर भाव दब गया हो और अब केवल बाहरी कठोरता ही बाकी रही। शकुंतला ने जैसे ये सब देखकर अपने अंदर की हल्की राहत महसूस की। उसने जेठानी के मुंह बने हुए चेहरे को देखा और फिर खुद के लिए चैन की सांस ली। जेठानी ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे कदम पीछे किया। उसके कदम कमरे की ठंडी फर्श पर हल्के से आवाज़ कर रहे थे। वो मुंह बनाकर चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। हवेली का कमरा अब फिर से सन्नाटे में डूबा था। जेठानी के कमरे की ओर दरवाज़ा बंद होने के बाद शकुंतला अकेले बैठी थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी अब भी मौजूद थी, जैसे जेठानी के हर कदम ने उसके अंदर की पुरानी यादों की धड़कनों को जगा दिया हो। तभी उसका फ़ोन बजा, स्क्रीन पर भाई का नाम चमक रहा था, विश्वनाथ। शकुंतला ने उसे उठाया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, रोबदार और कठोर आवाज़ में विश्वनाथ बोला, शकुंतला मैंने कहा था मत जाओ वहाँ, फिर क्यों चली गई? शकुंतला ने थोड़ी देर चुप रहकर आवाज़ को शांत रखते हुए जवाब दिया, भाई पति ने कहा था कि कुछ काम है, क्या करती? विश्वनाथ का चेहरा, जो कॉल में भी उसकी आवाज़ से झलक रहा था, सख्त और कठोर था। उसकी हर शब्द में आदेश, चिंता और कभी कभी तिरस्कार की मिलीजुली भावना झलक रही थी। क्या कहा तुम्हारे पति ने? तुम हमेशा मेरी हिदायतों की परवाह क्यों नहीं करती? उसकी आवाज़ में हल्का गुस्सा और दबाव था। शकुंतला ने अपनी उंगलियों से फ़ोन को हल्का कसते हुए कहा, भाई मैंने वही किया जो सही लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, मैं अब वही करती हूँ जो मुझे सही लगे। विश्वनाथ की सांसों में हल्की चिल्लाहट थी। वो जानता था कि शकुंतला वही नहीं रही जो पहले थी, समय ने उसे बदल दिया था और उसकी कठोरता के सामने अब उसकी अपनी ताकत झलक रही थी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदार तुम होंगी, कोई बचाव नहीं मिलेगा, उसने चेतावनी देते हुए फ़ोन काट दिया। शकुंतला ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में हल्की थकान और मन में हल्का डर था, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे अपनी राह खुद चुननी है। वहीं दूसरी तरफ हवेली के ऊपरी हिस्से में जेठानी अपने कमरे में शांत बैठी थी। उसने शकुंतला के सामने अपनी भावनाओं को दबा लिया था, पर मन में हल्की बेचैनी थी। उसके हाथ खुद बखुद खिड़की के कांच पर टिक गए। बाहर की ठंडी हवा उसे झकझोर रही थी, पर जेठानी का मन भीतर ही भीतर उथल पुथल का सामना कर रहा था। आज शकुंतला ने अपनी ताकत दिखा दी, उसने खुद से धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन वो केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, उसके अंदर का दर्द और मजबूती भी अब सामने आ रही है। ये मुझे चुनौती दे रही है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। इतना सोचते ही उसके पति कमरे में आ गए। नीली रात की हल्की रोशनी में उनकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। तुम कहाँ गई थी? उन्होंने पूछा, आवाज़ में हल्की चिंता और अदब मिला हुआ। जेठानी ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं देवरानी से बात करने गई थी, देखना था कि वो वास्तव में माँ जी की तबीयत के लिए आई है या कोई और बात छुपी हुई है। जेठ जी की आंखों में हल्का आश्चर्य और फिर एक तर्कसंगत मुस्कान उभर आई। तो तुमने सब देख लिया? उन्होंने धीरे से पूछा। जेठानी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ
लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी। जेठ ने उसकी तरफ देखा, उनके चेहरे की कठोरता में अब नरमी आ रही थी। तुम्हें समझना होगा, शकुंतला वही नहीं रही जो पहले थी। उसकी सोच और उसकी ताकत बढ़ चुकी है। अब केवल देखना और सही समय पर कदम उठाना ही हमारी समझदारी होगी।